नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश के 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है। टेली लॉ के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर वीएलई की ओर से 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क से सभी लोगों को मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की आज बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर केवी राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीएसआर निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाईमाधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवा निवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
वहीं श्री बेढम ने कहा कि यूसीसी संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है, विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हें पे आ रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
इस समय 2 प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं, तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
प्राथमिकता यही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।